का था, रूह वही रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं ओम प्रकाश कश्यप की लिखी कहानी, कहानी वाले बाबा। भाषा की रवानी है ये, भाषा की रवानी है ये, शब्दों की जुबानी है ये। सुख दुख की नौका में बैठी हम सबकी कहानी है ये। आओ मेरे प्यारे बच्चों इसको तुम सुनो, आओ मेरे प्यारे बच्चों इसको तुम सुनो, थोड़ा सा गुनू मैं, थोड़ा तुम गुनो। तो चार चोर चोरी को चले, चार चोर, जी हाँ चार चोर चोरी को चले, दबे पाँव से छिपते छिपाते, नजर बचाते, होले होले बात बनाते, बात बनाते, जी हाँ बात बनाते, शगुन मनाते, जुगत भिड़ाते, कोशिश में की देख न ले कोई, जान न ले कोई, आते जाते रात अंधेरी नील गगन में लुक छिप करते तारे, उन तारों की छांव तले, उन तारों की छांव तले चार चोर चोरी को चले। चारों में से एक का नाम था फूल सिंह, दूसरे का नाम था मूल सिंह, तीसरे का भूल सिंह और चौथा था झूल सिंह। झूल सिंह था टोली का सरदार। चलते चलते रास्ते में एक मंदिर पड़ा, चारों ने मिलकर मनोती मांगी, काम सधने पर पूरा करने का वादा किया, फिर पुजारी से प्रसाद ले आगे बढ़ गए। चलते चलते भूल सिंह बोला, अगर भला सोचो तो। फूल सिंह ने जोड़ा, हर काम भला होता है। मूल सिंह ने साथ दिया, खुद भला करो तो। झूल सिंह ने बात पूरी की, जग भला करता है। अचानक चारों के चेहरे बुझ गए कि जैसे दमकता हुआ चांद बादलों के पीछे जा छिपे, सूरज को ग्रहण लगे, दिया बुझे और चारों ओर घुप अंधेरा छा जाए। काफी देर बाद मूल सिंह बोला, दोस्तों हमें ये बातें शोभा नहीं देती। क्यों, क्या हम आदमी नहीं हैं? फूल सिंह ने तुनक मिजाजी दिखाई, आदमी तो वही है जिसकी सब इज्जत करें। मूल सिंह ने उलाहना दिया, ये सुनना था कि बाकी तीनों की बोलती बंद हो गई, चेहरे हारे हुए जुआरियों की तरह लटक गए, नजरें झूल सिंह की ओर उठी हुई थी। मामला अटकता हुआ दिखाई पड़े तो उसी से उम्मीद की जाती थी, हर विवाद प्रत्येक मुश्किल में वही राह दिखाता था, आखिर सरदार जो ठहरा। मूल सिंह ठीक कहता है, इस काम में सिवाय बदनामी के कुछ नहीं है। हम जान पर खेल कर रात रात भर जाकर घात लगाते हैं, कभी मिलता है तो कभी दाव खाली चला जाता है, बदले में सिवाय गाली नफरत और बद्दुआ के हमें मिलता ही क्या है। झूल सिंह बोला, हम अपनी कमाई का पांचवा हिस्सा दान में लुटा देते हैं। फिर भी दुनिया की नजरों में हम जो करें वह पाप, और लाला जो कम तोले, महंगा बेचे, झूठ बोले, बेईमानी करे, ब्याज पर रकम देकर औनी पौनी कमाई करे, ना किसी गरीब की मदद करे, दान में एक पाई तक ना लगाए, वह धर्मात्मा? मूल सिंह ने दुख जताया। वो तो कहावत ही है, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे, फूल सिंह ने जोड़ा। जैसा भी है अपना धंधा है, हमें इसकी इज्जत करनी चाहिए, भूल सिंह ने कहा तो झूल सिंह ने उसका जोरदार खंडन किया। धंधा जरूर है, मजबूरी नहीं है। अगर हमें मान सम्मान चाहिए तो यह काम छोड़ना ही पड़ेगा। हमेशा की तरह तीनों ने अपने सरदार की यह बात भी मान ली। परंतु अब एक और समस्या खड़ी हो गई। चारों के चारों चोर। चोरी अगर छोड़ दें तो क्या करें? कोई और काम तो उनको आता ही नहीं था। उलझन भारी थी, लेकिन जहां चाह वहां राह। आखिर लंबे सोच विचार के बाद रास्ता भी निकला। मूल सिंह का दूर का रिश्तेदार एक व्यापारी था। कम समय में ही उसने अच्छी तरक्की की थी, सो उसी ने व्यापार करने की सलाह दी। व्यापार माने व्यापार। चारों ने व्यापार का नाम भर सुना था, इससे ज्यादा वे कुछ जानते नहीं थे। बदनाम बहुत ज्यादा थे, इसलिए उन्हें कोई नौकरी पर रखने को तैयार नहीं था। सो काफी देर तक सोच विचार करने के बाद चारों ने व्यापार ही करने का फैसला किया। बिना धन के व्यापार भी कैसे सधेगा? मूल सिंह ने समस्या बयान की। इसे चारों फिर चकरा गए। बात सही थी, बिना रुपए के तो मंदिर का भगवान नहीं पसीजता। फिर व्यापार में तो पहले रुपए का गारा करना पड़ता है, उसके बाद ही मुनाफे की इमारत खड़ी होती है। जबकि उनके पास तो पूंजी के नाम पर कुछ था नहीं। चारों थे ठन ठन गोपाल। चोरी से जो जुटता चार हिस्सों में बंटने के बाद वह पांच सात दिन से ज्यादा न टिकता। तब भूल सिंह ने एक सलाह दी। व्यापार के लिए धन जुटाने का एक ही रास्ता है, तो देर किस बात की, जल्दी से बताओ, फूल सिंह ने कहा। बाकी दो भी भूल सिंह की ओर देखने लगे कि जैसे किसी चमत्कार की उम्मीद लगाए हो। हम एक बड़ी सी चोरी करें, जो भी धन हाथ लगे उसे चार हिस्सों में बराबर बराबर बांट लें, फिर अपने अपने हिस्से से चारों अलग अलग व्यापार करें। वाह भाई भूल सिंह, आज तुमने अपने नाम को सही कर दिखाया, फूल सिंह बोला। हमने अभी अभी चोरी ना करने का निर्णय लिया है, और तुम हमें अभी से झुठलाने पर तुले हो? फिर तुम ही कोई रास्ता सुझाओ फूल सिंह। फूल सिंह ने कहा। फूल सिंह चुप होठ सिल से गए। हमें कोई कर्ज तो देगा नहीं, मेहनत मजदूरी करना चाहें तो भी काम नहीं मिलेगा। ऐसी हालत में यही रास्ता है। अभी तुम पर है कि हम जैसे चल रहा है उसे या तो इसी तरह उम्र भर चलने दे, या फिर मन मार कर एक बार चोरी करके कोई इज्जतदार धंधा शुरू करें, नाम और नामा कमाएं और फिर इस धंधे से हमेशा के लिए राम राम कर लें। भूल सिंह ने अपना जोरदार तर्क सलीके से पेश किया। चारों के बीच फिर चुप्पी छा गई। अंत में झूल सिंह ने ही सरदार होने का धर्म निभाया, फैसला सुनाया। मुझे भी लगता है कि इस समय भूल सिंह की सलाह पर ही चलना ठीक रहेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं दिखता। लोग ना तो हमें काम पर रखेंगे ना उधार ही देंगे। हमारे सामने सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो हमेशा इस पाप कर्म में फंसे रहें, या फिर मन मारकर एक बार पाप और करें, फिर हमेशा हमेशा के लिए इससे छुटकारा कर लें। मेरे विचार से दूसरा रास्ता ही ठीक है, बाकी आप सबकी मर्जी। यह रास्ता भी ना भाए तो भी आगे देखा जाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि शुभस्य शीघ्रम। अगर तुम तीनों हां करो तो हम आज से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। कहते कहते झूल सिंह कुछ क्षणों के लिए रुका। यह हमारी आखिरी चोरी होगी, और वह भी उधार। इस चोरी से जो भी हाथ लगेगा वह उसके मालिक का हमारे ऊपर एहसान रहेगा। हम चारों डटकर मेहनत करेंगे और साल भर के भीतर सूद समेत सारा उधार लौटा देंगे। बोलो, मंजूर है? झूल सिंह ने जोर देकर पूछा। इस पर उन तीनों ने सहमति दर्शा दी। इसके बाद चारों ने खूब खोजबीन करने के बाद एक सेठ की हवेली पर धावा बोल दिया। अच्छी नीयत तो अच्छे सगुन, अच्छे सगुन तो सब कुछ अच्छा। दांव अच्छा पड़ा, चारों के मोटी रकम हाथ लगी, जेबें नोटों से भर गई। चोरी से निपटने के बाद उन्होंने वहीं गृह स्वामी के नाम पर एक पत्र लिखा। उसमें लिखा था कि जनाब, आज तक हमने अनेक चोरियां की हैं, कभी उनका मलाल नहीं हुआ, परंतु आज हम सच्चे दिल से शर्मिंदा हैं। आपके 80,000 रुपए जो आज हम चोरी करके अपने साथ ले जा रहे हैं, वे हमारे ऊपर कर्ज रहेंगे। साल भर के भीतर उसे हम सूद समेत वापस कर देंगे। नहीं कर पाए तो खुद हाजिर हो जाएंगे। उस समय आप जो भी दंड देंगे उसे हम चारों सिरमाथे लेंगे। बाहर आकर चारों ने 20,000 रुपए आपस में बांट लिए। विदा का समय आया तो सरदार ने अपने साथियों को फिर समझाया, भाइयों, हमने इंसान बनने की कसम खाई है। व्यापार करके सिर्फ रुपए कमाना हमारा मकसद नहीं है, इसलिए आगे से ऐसा कोई काम मत करना जिससे हमारी आगे भी बदनामी हो। लोग कहें कि चोर हमेशा चोर ही रहता है, कभी नेक इंसान नहीं बन सकता, और लालच में फंसकर ऐसा काम कभी मत कर बैठना कि लोगों का इंसानियत से भरोसा ही उड़ जाए। आज से ठीक 6 महीने के बाद हम यहीं इसी स्थान पर दोबारा मिलेंगे एक दूसरे का हाल जानने के लिए। तब तक के लिए विदा। इसके बाद सगे भाइयों की तरह चारों आपस में गले मिले, भरे गले से आपस में राम राम कहा, फिर अपनी नेक चलनी का वादा कर चारों अपने अपने रास्ते पर बढ़ गए। समय गुजरता गया, दिन, सप्ताह, महीने, ऐसे ही 6ठा महीना भी पूरा हो गया। नियत दिन, नियत समय और नियत स्थान पर वे मिले। एक दूसरे को देखते ही चारों की बांछें खिल गई। खुशी संभाले नहीं संभली तो आंखों से आंसू बनकर छलकने लगी। लेकिन जैसे ही व्यापार की बात आई, चारों की गर्दनें एक साथ लटक गई, चेहरों पर मुर्दानी छा गई। सहसा फूल सिंह आगे बढ़ा और अपनी नाकामी को शब्द देते हुए बोला, भाइयों, मुझे दुनिया के लंद फंद तो आते नहीं, फिर व्यापार भला कैसे सधता। बचपन में पिता को पशु खरीदते बेचते देखा था, सो यही धंधा अपनाने का फैसला किया। ये सोचकर कि आसान काम है, किसी तरह तो सध ही जाएगा। शुरू में तो मुनाफा भी खूब हुआ, जैसे सावन भादों में अंबर से पानी बरसता है, वैसे ही चारों ओर से रुपया बरसने लगा। मैं खुश, पहली बार सच्ची मेहनत से मिली सफलता का आनंद भी भोगा। कुछ ही महीनों में मैं गर्दन तान कर चलने लगा। एक बार पशुओं की पैंट में गया, रुपयों से भरा झोला लेकर। भगवान ही जाने नोटों की गर्मी थी या मेरी अकल पर पत्थर पड़े थे। मैंने पैंट से दर्जन भर बैल खरीद लिए, यह सोचकर कि उन्हें सोनपुर के मेले में ले जाकर बेचूंगा तो खूब मुनाफा होगा। सेठ का सारा कर्ज मैं अकेले ही चुका दूंगा। लेकिन दुर्देव की मार, मैं सोनपुर के मेले की ओर बढ़ ही रहा था कि बैलों में महामारी फैल गई। मेरे सारे बैल उसकी चपेट में आ गए। कमाना तो दूर मैं जितना हाथ में लेकर गया था उसे भी गंवा बैठा। फूल सिंह की बात ने बाकी तीनों को दुख से सराबोर कर दिया। उसके बाद मूल सिंह ने अपना किस्सा बयान किया। तुम्हें मालूम है कि मुझे शुरू से ही खाना पकाने का शौक रहा है। यही सोचकर मैंने ढाबा खोला था। मेरी दुकान के सामने ही बस अड्डा था। यात्रियों के आने जाने से भीड़ रहती थी। थोड़े ही दिनों में ढाबा ठीक ठाक चल निकला। मैं यह सोचकर खुशियां मनाता था कि कुछ ही दिनों में सेठ का सारा कर्ज मैं अकेले ही चुका दूंगा। आप तीनों की मदद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन वक्त की मार या दुर्भाग्य का वार, एक दिन एक ऐसा ग्राहक आया जो मेरी पिछली जिंदगी के बारे में जानता था। मेरे समझाने, बार बार फरियाद करने के बावजूद वह मेरी पहचान को छिपाए रखने को तैयार न हुआ। बद से बदनाम बुरा। लोगों को जैसे ही मेरी पिछली जिंदगी की जानकारी मिली, वे मुझसे दूर होते चले गए। पहले ग्राहक घटे, फिर पुलिस ढाबे के चक्कर लगाने लगी। कुछ ही दिनों में धंधा बिल्कुल पिट गया और एक दिन वह ढाबा भी मेरे हाथ से जाता रहा। भूल सिंह की कहानी भी कम दर्दनाक न थी। काम धंधे की तलाश करते हुए उसने परचून की दुकान खोली थी। अपने सरदार का कहा उसको याद था, इसलिए ना महंगा बेचता न कम तोलता था, न झूठ बोलता न ही मिलावट करता था। अनुभव की कमी, बेईमानी के बाजार में ऐसे कब तक टिक पाता। लगी लगाई पूंजी कब हवा हो गई वह जान ही ना पाया। झूल सिंह यानी सरदार की भी कहानी मिलते जुलते ही थी। वह सरदार जरूर था, लेकिन 3 के 13 बनाने की कला से एकदम दूर था। उसके पिता रंगरेज थे। छुटपन में वह अपने पिता के काम में मदद किया करता था, इसलिए धंधे के रूप में वही उसको ठीक जान पड़ा। कस्बे से बाहर एक तालाब के किनारे वह कपड़ों को धोने और रंगने लगा। 2-3 महीने बाद धंधा जमने लगा। इस पर इलाके के दूसरे रंगरेज उससे नाराज हो गए। झूल सिंह को नीचा दिखाने के लिए वह कम मजदूरी पर भी काम करने लगे। दूसरी ओर मशीनों से रंगा और छपा कपड़ा भी गांव आने लगा, जो हाथ के रंगे कपड़े के मुकाबले सस्ता और चमकीला था। इससे ग्राहक घटने लगे और कमाई सिमट कर रह गई। वह किसी तरह उस धंधे को खींचे जा रहा था, बस यही उसमें और बाकी तीनों में अंतर था। इस तरह चारों की हालत एक जैसी थी। व्यापार के प्रति उनकी रुचि समाप्त हो चुकी थी। ना उसका उत्साह था, ना व्यापार को नए सिरे से जमाने लायक पूंजी उनके पास थी। आगे क्या करें, बस यही सवाल उन्हें खाए जा रहा था। अभी आप सुन रहे थे ओम प्रकाश कश्यप की लिखी कहानी कहानी वाले बाबा का पहला भाग। गाथा में इसे आपके लिए प्रस्तुत किया शिवानी आनंद ने।